ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे काबिल एहतराम हजरात उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, आज हम सब के लिए और ख़ास तौर पर यहाँ के रहने वाले हमारे भाइयों के लिए बड़ी मसर्रत और ख़ुशी का मकाम है कि इस मुल्क में पहली शरई मस्जिद शुरू हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन हजरात को ये सआदत अता फरमाई और इनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने इस मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू करवा कर पाए तकमील तक पहुँचाया। इस मौके पर जितनी भी खुशी का इजहार हो कम है। सैयदना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब काबतुल्लाह की नई इमारत बनाई और उसकी तकमील हुई तो उस मौके पर उन्होंने एक तो काबतुल्लाह की तमाम दीवारों को अंदर और बाहर से खुशबू लगाई, ऊपर नीचे सब, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों में, मक्का वालों में ऐलान किया कि जो मेरी इताअत जिस पर ज़रूरी है मैं उससे कहता हूँ कि जिसके अंदर ऊँट को ज़बह करने की हदी की ताकत हो ऊँट ज़बह करे, जिसमें उसकी ताकत नहीं है बकरी के ज़बह करने की है वो बकरी ज़बह करे, और जिसमें उसकी भी ताकत नहीं है वो सदका करे। और फिर खुद अहले मक्का को लेकर पैदल खुले पांव तनईम गए, वहाँ से उम्रे का एहराम बांधा और आकर के बैतुल्लाह का तवाफ किया और उम्रा किया, और 100 ऊँट उन्होंने दबा किए। खुद लिखा है मौरखीन ने कि उस दिन जितने ऊँट दबा हुए, जितनी बकरियाँ दबा हुई, जितना सदका हुआ, कभी इससे पहले इतना दबा नहीं हुआ था और इतना सदका नहीं हुआ था। बड़ी मसरत का इजहार किया और कई दिनों तक खिलाने पिलाने का सिलसिला जारी रहा। ये बात मौरखीन ने लिखी है। तो बहरहाल मस्जिद की तामीर की तकमील के ऊपर खुशी का इजहार ये हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से साबित है। वैसे मस्जिद की तामीर ये मोमिन के ईमान का तकाजा है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में रहे, वहाँ चूँकि काबतुल्लाह मौजूद था, इसलिए वहाँ किसी मस्जिद की तामीर की उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद जब आप हिजरत फरमा कर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो आपका पहला क़याम कुबा में रहा। उस ज़माने में कुबा मदीना मुनव्वरा से अलग एक मुस्तकिल आबादी थी, गांव था, जिस्में कबीले बनु अमर इब्न औफ के लोग आबाद थे। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने राजह कौल रिवायत के मुताबिक 14 रोज़ क़याम फरमाया, और उसी ज़माने क़याम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली। सबसे पहला पत्थर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखा, दूसरा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रखवाया, तीसरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रखवाया। ये मस्जिद की जो संगे बुनियाद रखवाई जाती है तासीस, वो भी एक मसनून तरीका है, और ये पहली मस्जिद थी जो बनाई गई। आपने अपने दस्ते मुबारक से बनाई, उसमें सब ने जो मौजूद थे हिस्सा लिया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर लाते थे और उसकी तामीर में शरीक थे, जिसके मुताल्लिक कुरान पाक में लमस्जिदुन उस्सिसा लित्तक़्वा मिन अव्वल यौमिन अहक्क अन तकूम फी रिजालुन युहिब्बून अन यतत्ताहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन वाली आयत नाज़िल हुई कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा के ऊपर रखी गई है, वो इस बात की ज़्यादा हकदार है नबी कि आप उसमें क़याम करें, नमाज पढ़ें। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाकी को पसंद करते हैं, पाक होने को, और अल्लाह ताला पाकी रखने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। जब यह आयत नाजिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन हजरात से पूछा कि तुम आखिर पाकी हासिल करने के लिए वो कौन सा तरीक़ा इख्तियार करते हो जिसकी अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई इस आयत में। उन्होंने बतलाया कि हम डेरे के बाद पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये पहली मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई। उसके बाद अब जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो वहाँ जाने के बाद भी आपका पहला क़याम तो सैयदना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर रहा। अभी मस्जिद वहाँ बनी नहीं थी, तो आप बकरियों के बाहों में सफाई करवा कर उसी में नमाज अदा करते थे। आपने जब मस्जिद की तामीर का इरादा फरमाया, तो अब कबीले बनु नज्जार के लोगों को आपने बुलाया, जो आपके दादा ख्वाजा अब्दुलमुत्तलिब के नदियाली रिश्तेदार थे, वहीं आपका क्याम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बनू नज्जार ही से ताल्लुक रखते हैं। आपने उनसे कहा, जहाँ आपकी ऊँटनी सबसे पहले बैठी थी वही जगह एक बाग था, पुराना बाग था, जो यतीमों की मिल्कियत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान के बड़ों को बुला करके उनसे फरमाया, ये बाग मेरे हाथ फरोख्त कर दो और उसकी कीमत बतलाओ। उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम इसकी कीमत अल्लाह से लेंगे, आपकी खिदमत में यूँ ही पेश करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल नहीं फरमाया, बल्कि 20 दीनार उसकी कीमत के तौर पर अदा करने का सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया। वो कीमत अदा की गई। वो पुराना बाग था और ज़मीन भी खाबड़ खूबड़ थी, ऊँच नीच। उस ज़मीन को हमवार किया गया। मुशरिकीन की कुछ पुरानी कब्रें थी, उनकी मट्टी अंदर से निकाल कर बाहर फेंकी गई। खजूर के पुराने दरख्त थे, उनको काट करके उनके जो तने थे उनको क़िबला की जिहत में गाड़ दिया गया और उसके दोनों तरफ पत्थर लगा दिए गए। ये हुआ क़िबले की दीवार तैयार हुई और उसके बाद खजूर ही के तनों के गोया सुतून और खजूर के पत्तों की छत और कच्ची दीवारें और उसकी तामीर में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस हिस्सा लिया। आप खुद पत्थर उठा कर के लाते थे और उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते हैं, दुआ ताकुया काम करने वालों में जोश पैदा हो। इसलिए रज़िया अशार मुख्तसर जुमले होते हैं, गुजराती में जिसको शौर्य गीतों कहा जाता है वो आप भी पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा ला ला अक्ष इल्ला इशुल आखिरा फ़िल अंसार वल मुहाजिरा। और हजरत अंसार हजरत सहाबा नामुल्लज़ीन बायअऊ मुहम्मदन मा बकीना अबदा, ये अशार जवाब में पढ़ा करते थे। बहरहाल इस तरह मस्जिद नबवी की तामीर हुई और जब मस्जिद मुकम्मल हो गई तो उसके किनारे पर अज़वाज मुतहरात के लिए कमरे तामीर किए गए और जब वो बन गए तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान से उधर शिफ्ट हुए, मुंतकिल हुए। तकरीबन 6 या 6.5 महीने आप सलासम का क़याम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर रहा बहैसियत मेहमान। और जब ये कमरे तैयार हुए आप मुंतकिल हुए, देखो आपने सबसे पहले मस्जिद बनाई और उसके बाद अपने कमरे बनवाए, गोया आने वाली उम्मत को ये सबक दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए से कि मुसलमान किसी जगह आबाद होने के लिए जाए तो उसको चाहिए कि पहले अल्लाह का घर बनाए फिर अपना मकान बनाए। यहाँ के जो हालात सुने, यहाँ अभी तक ये हजरात जो आए हैं उनको अपने मकान बनाने का मौका नहीं मिला। ये पहली मस्जिद इन्होंने बनाई और अब आइंदा ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद और तवक्कु रखते हैं कि अल्लाह ताला इस मस्जिद की तामीर की बरकत से उनके लिए भी मकानात की तामीर के सिलसिले को आसान फरमाए। बहरहाल एक सुन्नत इन हजरात के ज़रिए से ये अदा हो रही है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तामीर मस्जिद के काम में खुद बनफ्से नफीस हिस्सा लिया। मस्जिद की तामीर एक ऐसा काम है जो बड़े बड़े अंबिया ने अंजाम दी। सैयदना हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलात व सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने काबतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया। तूफान नूह के मौके पर काबतुल्लाह की इमारत जमीन से उठा ली गई, आसमान पर पहुंचा दी गई, और जब से वहां पहुंचाई गई फरिश्तों का काबा बनी। रोजाना 70,000 फरिश्ते वो उसका तवाफ करते हैं, और वहां एक खाली जगह थी, टेकरी सी थी, और वही इसी तरह रही। हजरत इब्राहिम अला नबियना अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया कि वो उसकी फिर से तामीर करें। हजरत जिब्रील को भेजा कि उसकी जो बुनियादें असली थी, फरिश्तों ने जब उसको बनाया था तब से तो ज़मीन के अंदर छुपी हुई थी उसका फाउंडेशन। हजरत जिब्रील ने आकर के उन बुनियादों को खोद करके बतलाया हजरत इब्राहिम अला नबियना अलैहिस्सलाम को, और उन्हीं बुनियादों पर हजरत इब्राहिम अला नबियना अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की। इस शान से कि अब्बा यानी हजरत इब्राहिम तो तामीर का काम कर रहे हैं, और बेटे हजरत इस्माइल अला नबियना अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा उठाकर ला करके पेश कर रहे हैं। इस तरह काबतुल्लाह की तामीर की। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने इस मंजर को बड़े अजीब वरीब अंदाज के अंदर बयान फरमाया है। फरमाते हैं वैद यरफ़ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो उस वक्त को, हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस मंजर को अपने ज़हनों में ताज़ा करो कि जब हजरत इब्राहिम अला नबियाना अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे, और इस्माइल अला नबियाना अलैहिस्सलाम इस काम में उनकी मदद कर रहे थे, और इस काम को अंजाम देते हुए दोनों बाप बेटे कुछ दुआएं भी कर रहे थे। उन तमाम दुआओं को अल्लाह तबारक तआला ने इस मौके पर बयान फरमाया है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये हमारे परवरदिगार तो हमारे इस अमल को यानि बैतुल्लाह की तामीर के इस काम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमा। बेशक बेशक तो अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाला और उनके दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है। इस दुआ में भी हम लोगों के लिए और हर उस आदमी के लिए जो दीन का कोई काम अंजाम दे रहा है बड़ी इबरत और सबक है। देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया था काबतुल्लाह की तामीर का, और हजरत जिब्रील की निगरानी और उनके सुपरविजन में ये काम वो अंजाम दे रहे थे, फिर भी डर रहे हैं। मालूम नहीं हमारा ये अमल अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूल हासिल करता है या नहीं, इसलिए दुआ कर रहे हैं। हम सब के लिए ये एक सबक है। जो भी आप लोगों ने मस्जिद बनाई खुशी का मौका है, लेकिन दिल में यही दुआ होनी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की दाद अल्लाह की शान तो बड़ी बेनियाज है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। बहरहाल ज़रूरत इसकी है कि खुशी के साथ साथ इस खुशी के अंदर कोई फख्र और मुबाहत न हो, बल्कि इज्जो इंकसारी हो। अल्लाह की बारगाह में दिल में ये दुआ हो कि अल्लाह हमारे इस अमल को तो अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमा। और फिर आगे दुआ फरमाते हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वअरिना मनासिकना। ये हमारे परवरदिगार तो हम दोनों बाप बेटों को मुसलमान यानि तेरे अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम करने वाला, गोया तू जो हुक्म दे बिला चूनो चिरा उसको मान लेने वाला बना। मुस्लिम उसको कहते हैं। हमें भी इस्लाम मुस्लिम का लखब जो है वो लदी सम्मा कुमल मुस्लिमी। हजरत इब्राहिम अला नबियाना अलैहिस्सलाम ही ने इस उम्मत को ये नाम दिया है। आगे फरमाते हैं वा और हमारी औलाद में से वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक हमारी औलाद में से पूरी एक उम्मत ऐसी बनाई हो जो तेरे अहकाम के सामने सर झुकाने वाली हो। और फिर आगे फरमाते हैं, वो अरेना मना सिकना, कि अल्लाह हमें हमारी इबादत के तरीके भी बदलाए। देखो ना, मस्जिद बनाई है ना, तो खाली मस्जिद बना करके आप लोग बैठ ना जाएं, तालीम का सिलसिला भी यहाँ होना चाहिए। मस्जिद में जो अमाल अंजाम दिए जाते हैं उसमें नमाज वगैरह और तालीम और तरबियत का सिलसिला भी यहाँ पर कायम होना चाहिए। मस्जिदों की तारीख यही रही है, खास करके इस्लामी सल्तनत के दौर में जो बड़ी बड़ी मस्जिदें रही हैं वहाँ ये सिलसिले तालीम के भी बराबर जारी रहे। ये जितने भी बड़ी मस्जिदें थीं वहाँ यही सिलसिले जारी थे, यहाँ भी इस्लामी तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। खाली बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। यहाँ जो बड़े नावाकिफ हैं नमाज से, कुरान की गोया तिलावत से और दूसरे अहकाम शरिया से, उनकी तालीम और तरबियत के लिए भी गोया ये सिलसिला यहाँ जारी हो, उसका खास एहतमाम होना चाहिए। हम लोग जो हैं हमारा मिजाज ऐसा बन गया कि असबाब और वसाइल को बनाने में तो बहुत जोश और खरोश का जो है सबूत पेश करते हैं, और बाद में जब असल मकसूद सामने आता है तो फिर जो है वो ढीले होकर के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, ये तो जरिया है, ये असल मकसूद नहीं है। असल मकसूद तो क्या है, वो नमाजें हैं जो यहाँ पढ़ी जाएगी, तालीम और तरबियत का वो सिलसिला है जो यहाँ जारी होगा। इसलिए आप हजरात को बहुत एहतमाम के साथ इन सिलसिलों को यहाँ जारी करना है। वारेना मनासिकना, ये इस दुआ में इस बात की तरफ एक इशारा है। और फिर आगे बारी ताला से दुआ फरमाते हैं, रब्बना वबास्तीम रसूलम मिनहु, कि हमारे परवरदिगार हमारी औलाद से पूरी कौम पूरी उम्मत ऐसी बनाई हो जो तेरे अहकाम के सामने सर झुकाने वाली हो, और उनकी हिदायत के लिए एक रसूल उन्हीं में से भेजियो जिसका काम क्या होगा, यतलु अलैहिम आयात, तेरे कुरान तेरी किताब की आयतों की तिलावत करेंगे, यानी कुरान पाक के अल्फाज की तालीम देंगे। यतलु अलैहिम आयात वयुअल्लिमुहुम किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देंगे। वयुज़क्कीहिम, और उनको गंदे अकाइद गंदे आमाल गंदे अखलाक से पाक करने का तज़किये का काम करेंगे। गोया ये सिलसिले इस मस्जिद के अंदर जारी होने चाहिए। बहरहाल मैं तो यह अर्ज़ कर रहा था कि मस्जिद की तामीर एक ऐसा अजीम काम है जो बड़े बड़े अंबिया ने अंजाम दिया। सैयदुल अंबिया जो है अबुल अंबिया सैयदना हजरत इब्राहिम, उनके बाद जितने भी नबी आए दुनिया में सब उनकी औलाद है, और खलीलुर रहमान है वो, अल्लाह के खलील हैं। उन्होंने ये काम दिया अंजाम दिया, बेटे इस काम में उनकी मदद कर रहे थे। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी, जैसा कि अभी मैंने बताया, मस्जिद की तामीर में खुद हिस्सा लिया। आजकल ये सुन्नत ख़त्म होती जा रही है। हमारे पुराने लोग जो थे ना, जब मस्जिद की तामीर का सिलसिला होता था तो वो खुद भी उसमें मजदूरी करते थे। हमने अपने बचपन में ये चीज़ें देखी हैं कि मस्जिद की तामीर गांव में हो रही है तो सब गांव के लोग भी बाकायदा उसमें हिस्सा लेते हैं। आपको भी लेना, हर एक को लेना चाहिए। खाली पैसा खर्च करना काफ़ी नहीं, खुद उसमें अपने हाथों से काम करें, ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी की तामीर, इसी तरह काबतुल्ला की तामीर में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया। जब काबतुल्ला की इमारत बोसीदा हो गई थी और कुरैश ने उसको असर नौ बनाने का फैसला किया और जो है उसके लिए सरमाया जमा किया हलाल माल में से, तो जब तामीर का काम शुरू हुआ सब कुरैश ने इसमें हिस्सा लिया। नबी करीम صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال کی تھی، اس وقت آپ نے بھی باقاعدہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں خود حصہ لیا، دو دو آدمیوں کی جوڑی بنا دی گئی تھی کہ وہ مناسب پتھر جو ہے پہاڑوں سے تلاش کر کے لائیں۔ اس زمانے میں ایسی فیکٹریاں نہیں تھیں جو پتھروں کو مناسب انداز میں کٹنگ کرے، آج کل تو یہ ہے، اس زمانے میں تو ایسی فیکٹریاں نہیں تھیں، لوگ پتھر ڈھونڈ کر کے مناسب پتھر لایا کرتے، تو اس کے لیے دو دو آدمیوں کی جوڑی بنائی گئی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوڑا گیا، دونوں اسی طرح لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا مبارک چھل رہا ہے، تو چچا نے مشورہ دیا آپ کو کہ آپ اپنی لوگی نکال کر کے جو ہے نیچے رکھو تاکہ کندھا چھلنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء نے حصہ لیا۔ یہ کام تعمیر مسجد کا ایسا عظیم کام ہے کہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے اس کو انجام دیا ہے، اور یہ مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ ان بیوت اللہ عند الارض مساجد، طبرانی کی روایت ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے گھر جو ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ یہ اللہ کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی تجلیات وہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ ہم جس طرح گھر میں رہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، اللہ کی خصوصی تجلیات اس پر نازل ہوتی ہیں، اس معنی کر کے ان کو اللہ کے گھر سے شرافت اور تعظیم کے لیے اس کی نسبت کی گئی۔ اور روئے زمین پر سب سے بہترین کوئی خطہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ ایک یہودی عالم نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، ای البلاد احب الی اللہ، زمین کے خطوں میں پلوٹوں میں کون سا پلوٹ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں، جبریل آئیں گے ان سے پوچھ کر کے جواب دوں گا۔ حضرت جبریل تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت جبریل نے جواب میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ چنانچہ پھر دوسری مرتبہ جو آئے انہوں نے عرض کیا کہ آج میں اللہ سے اتنا قریب ہوا جتنا پہلے کبھی قریب نہیں ہوا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدھا وابغض البلاد الی اللہ اسوابھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب پلاٹ، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ کی نگاہوں میں کیا ہیں؟ مسجد۔ اور روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کی نگاہوں میں بازار۔ اب دیکھو ہمارا دل کہاں لگتا ہے، ہمارا دل کہاں لگتا ہے، ذرا اپنا جائزہ لے لو۔ اللہ قرآن حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز اپنے سائے میں اس وقت تو جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان سات میں سے رجل قال، جس کا دل جو ہے وہ خرج من المسجد، رجل قلبه معلق اذا خرج من المسجد حتى يعود اليه يرجع اليه، او كما قال عليه الصلاه والسلام، کہ جب مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، واحد نماز کے بعد جب واپس لوٹتا ہے گھر یا دکان پر، تو دل یہی ہے، زہر کے لیے آیا وہاں واپس جانے کے بعد بھی دل یہی ہے کہ کب عصر کا وقت ہو اور میں مسجد جاؤں۔ یہ وہ ہر نماز میں اس کا دھیان اسی کی طرف ہے۔ یہ مسجدیں جو ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جس آدمی کا دل اس کے اندر لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور احادیث میں इन मंजिलों को जन्नत की तैयारियाँ और जन्नत के बागात करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादि जन्नते फरतौ फीहा, जब तुम जन्नत की क्यारियों में से, यानी जहाँ सब घास उगी हुई हो वहाँ जो है जानवर बहुत ज़्यादा चरते हैं, तो तुम जब जन्नत की क्यारियों पर से गुजरो तो उसमें चर लिया करो, जानवर की आदत होती है, जहाँ सब्जे के पास से गुजरेगा उसका मालिक चाहे या ना चाहे वो मुंह मार लेगा, समझाए कि नहीं। वह हमें भी मस्जिद से जब गुजरें तो उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। पूछा गया वहाँ रियाजुल जन्नत, जन्नत की क्यारियाँ क्या हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदें जन्नत की क्यारियाँ हैं। पूछा गया उमर रतौ किया, चरना क्या है उसमें, कहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात जो हैं वो गोया चरना, यहाँ आकर के इसका अहतमाम होना चाहिए। आज हमारे ज़माने में इतनी गफलत आम हो गई कि मस्जिद में आने के बाद भी लोग जो हैं वो बजाय तस्बीह पढ़ने के, कुरान पाक की तिलावत करने के, अल्लाह की तरफ रुजू और इनाबत और दुआ का अहतमाम करने के बातों में मशगूल रहते हैं, बल्कि अब तो दिन ब दिन ये मिजाज बनता जा रहा है कि कुछ पहले आ गए अगर जमात से पहले, यानी मस्जिद की जमात जो नमाज की जमात खड़ी होने वाली है उसमें अगर 10 मिनट देर है बाकी देखें तभी तो देर है, वहाँ बाहर खड़े रहेंगे वहाँ बातें करेंगे, किसी को मस्जिद में आकर नमाज पढ़कर दुआ और तस्बीह वगैरह में मशगूल होने की तौफीक नहीं हो। ये बहुत गफलत की चीज़ है। अल्लाह ताला का ये घर है, उसके साथ मोहब्बत का ताल्लुक होना चाहिए, उसके साथ उन्स होना चाहिए, हमें हमारा मिजाज ऐसा बनाने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो बनाओ, बना है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि मस्जिद के साथ हमारा जी लगे, मस्जिद में आवे ना तो हमें खुशी हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा रअयतुम रजुल यदअल मस्जिद फाशहदू लहू बिल ईमान फइन्नल्लाह तबारक व तआला यकूल इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाह वल्यौमिल आखिर व अकाम सलात व आता ज़कात। हुजूर आदम फरमाते हैं, जब किसी आदमी को देखो जो बड़ी पाबंदी के साथ मस्जिद में आता है तो तुम उसके हक में ईमान की गवाही दो, क्यों, इसलिए कि अल्लाह तबरक तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, मस्जिद को आबाद करते हैं कौन, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाह वल्यौमिल आखिर, जो लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वह अकामस्सलात और नमाज को कायम करते हैं। वह नमाज के कायम करने वालों के मुताल्लिक भी कुरान में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि वो कौन हैं, ईमान वाले, आखिरत पर अल्लाह पर ईमान रखते हैं। तो गोया किसी को मस्जिद के साथ अगर ताल्लुक है तो ये दलील है इस बात की कि वो ईमान वाला है। गोया अपने ईमान की भी सनद और सर्टिफिकेट हमें अल्लाह से ले लेना चाहिए, कुरान में ये सर्टिफिकेट अल्लाह ने दिया है। अब इस सर्टिफिकेट के हकदार हम उस वक्त होंगे जबकि नमाजों का हर वक्त एहतमाम करें। तो बहरहाल मस्जिद जो है वो वाकईतन ईमान वालों के लिए एक मरकजी हैसियत रखती है, ऐसा नहीं कि खाली नमाज के लिए, बल्कि अहले ईमान के तमाम उमूर मस्जिद ही से अंजाम दिए जाने चाहिए। बाकायदा अहले इल्म ने निज़ामुल मसाजिद शरीयत मुतहरा में मस्जिदों का सिलसिला उसका निज़ाम कैसा था उस पर तहरीरें किताबें लिखी हैं। गोया सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो जो कुछ था सब कुछ यही था। दारुल इमारा भी, यानी गोया जो है गवर्नर हाउस और हाकिम का, ये भी यही मस्जिद थी। नबी करीम सब यहीं सब कुछ आता था, हुजूर की खिदमत में वफूद भी यहीं आते थे, वो भी यहीं ठहराए जाते थे, और अमवाल भी यहीं लाए, यहीं से तकसीम होते थे, यहीं से जो है जिहाद के लिए फौजें भेजी जाती थी। गोया हर चीज का मरकज मस्जिद था। हमें मस्जिद के साथ ऐसा ताल्लुक होना चाहिए और इस ताल्लुक को कायम करना चाहिए, ख़ास करके तालीम और तरबियत का सिलसिला। हमारे बच्चों को इस वक्त इस ज़माने में औलाद की तालीम और तरबियत बड़ी अहमियत रखती है। ज़रूरत है कि उसके लिए ख़ास इंतज़ाम हो। आप लोगों ने भी सुना यहाँ कुछ मकतब के लिए बराबर के अंदर इमारत जो है इसके साथ साथ लगाई है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो हो। बाकायदा हर शख्स अपने औलाद को भेजे मकतब के अंदर तालीम हासिल करने के लिए। खुद तो कुछ करने की तौफीक होती नहीं है, तो मकतब के सिलसिले जहाँ हैं वहाँ अपने औलाद को भेज करके उनके ईमान की हिफाजत का अहतमाम किया जाए। हमारी मौजूदा और आइंदा नस्लों की ईमान का हिफाजत जो है वो इसी पर मौकूफ है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने ये मकातिब का सिलसिला जो कायम किया है वो दरअसल हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत के लिए, इसलिए इसकी तरफ भी खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह तआला ने आप हज़रात को जो है ये सआदत अता फरमाई, ये मौका अता फरमाया। आपने जो है यहाँ इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। वाकईतन आपने यहाँ रहते हुए जिस भी सरो सामानी के हाल में आप लोग रहते हैं और इसके साथ हिम्मत करके इसके लिए आपने जो कुर्बानियाँ दी वो वाकईतन काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह उसको अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाए। जैसा कि मैंने अर्ज किया, उस पर फख्र और मुबाहत नहीं होना चाहिए बल्कि इज्जत और इंतिसारी की कैफियत होनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह इस बेसरो सामानी के हाल में भी आपने हमको तौफीक दी कि आपके घर की तामीर में हमने हिस्सा लिया और ये जो है मस्जिद तैयार हुई। तो बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि मस्जिद से लगे हुए इन सारे सिलसिलों को, कि भाई तालीम और तरबियत का सिलसिला, दावत और तबलीग का सिलसिला और इसी तरह आपस में दूसरे जितने भी जो है आपस के ताल्लुकात हैं उनके लिए बुनियाद मस्जिद ही को बनाया जाए, यही असल यह है। पहले ज़माने में बाकायदा इसका अहतमाम होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अमीरुल मोमिनीन और अपने ज़माने के इतने बड़े इलाके के बादशाह थे, इसके बावजूद मस्जिद में निगरानी रखते थे कौन आया कौन नहीं आया। एक साहब मस्जिद से फजर में नजर नहीं आए, उनकी वालिदा हजरत शिफा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दिन में निकले होंगे अपनी की तो वहीं उनकी वालिदा के घर भी गए और पूछा कि आज मैंने आपके साहबजादे को फजर की नमाज में नहीं देखा। कितनी निगरानी है। और फिर उन्होंने जवाब में यह कहा कि वो तो रात भर इबादत में मशगूल रहे, सुबह के वक्त उनकी आँख लग गई, इसलिए वो मस्जिद में जमात में शरीक नहीं हो सके। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि मैं जो है फजर की नमाज जमात के साथ अदा करूँ ये मुझे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि मैं रात पर इबादत करूँ और फजर के वक्त सो जाऊँ। दोबारा जमात के साथ नमाज की अदायगी का निज़ाम बहुत अहम है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में अपनी सल्तनत के तमाम गवर्नरों के नाम जो सरकलर जारी किया था उसमें आपने ताकीद फरमाई थी, इन्ना अहम उमूरकुम इंदी सलात फमन हफिज़हा व हाफ़िज़ अलैहा व फ़क़द हफिज़ दीनहु व मन ज़य्यहा फ़हुवा लिमा सिवाहा अज़्यहु, कि तुम्हारी तमाम उमूर में सबसे अहम मेरे नज़दीक नमाज है। जिस आदमी ने नमाज की हिफाजत की यानी उसके फ़राइज़ वाजिबात सुनन मुस्तहबात और आदाब सब की रियायत करते हुए और मकरूहात वगैरह से बचते हुए नमाज को अदा करने का अहतमाम किया, ज़रा नमाज का भी जायज़ा लेते रहना चाहिए। पहली रेशन क्या कहते हैं, मकान को दो चार साल के बाद ठीक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिनोवेशन। हम हर चीज़ का रिनोवेशन करते हैं, मकान का रिनोवेशन करते हैं, लेकिन कभी नमाज का रिनोवेशन करने की तौफीक नहीं होती। वही बचपन में जो चालू हुई है वही चल रही है। हर एक की किताबें पढ़ने वाले अहले इल्म में उनका भी यही हाल, किताबें सब पढ़ डाली, निसाब की फिका की बड़ी बड़ी किताबें, लेकिन नमाज वही है जो चल रही है। नमाज का कभी हमने जायजा नहीं लिया भाई आपस में एक दूसरे को, हम अपनी नमाज पढ़ करके दिखलाएं, जरा देखो तो सही मेरी नमाज के अंदर कोई कमी और कोताही रह गई हो तो बताओ ताकि मैं उसको ठीक कर लूँ। इसका भी मुजाकरा होना चाहिए मस्जिद के अंदर, समझाएंगे। खास करके इमाम साहब को चाहिए कि लोगों को नमाज की तरफ मुतवज्जह करें, उनकी निगरानी करें, नमाज सिखलाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कोई रुकू में नमाज में कहीं कोताही रह गई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साहबा को तंबीह फरमाते थे। यहाँ गोया नमाज को का रिनोवेशन भी होना चाहिए, बाकायदा अपनी नमाज का जायज़ा लेते रहो। हर चीज़ को ठीक करते हैं लेकिन नमाज नहीं। हालांकि नमाज में पढ़ नमाज पढ़ने के दौरान कभी कभी ऐसे मसाइल पेश आते हैं कि हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातहू फरमाते हैं, अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के कौल नकल करते हैं कि कुरान और हदीस पढ़ाते पढ़ाते फिका पढ़ाते पढ़ाते और फतवे देते देते हुए 60 साल हो गए, फिर भी कभी नमाज में ऐसी सूरत पेश आती है कि नमाज के बाद किताब खोल के देखना पड़ता है कि उसका क्या हुक्म। बड़े बड़े मुफ्तियों को भी वक्ती तौर पर वो इस्तेहज़ार नहीं होता, देखना पड़ता है। तो और बहुत से लोग ऐसे ऐसे नमाज पढ़ते हैं जैसे कभी उनको कोई इश्काल नमाज में पेश ही नहीं आता। खैर तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नमाजों को दुरुस्त करने की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाए और मस्जिद के आदाब का लिहाज होना चाहिए, मस्जिद के आदाब का लिहाज होना चाहिए। एक हदीस जो हजरत हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुलरहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अलमुदखल के हवाले से फतावा रहीमिया के अंदर नकल की है, वो सुना देता हूँ कि उसमें है कि जब कोई आदमी मस्जिद के अंदर बात करता है तो अल्लाह का फरिश्ता कहता है उसकुत या वली अल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त चुप हो जा। उस पर भी अगर वो चुप नहीं होता तो वो कहता है उसकुत या अदू अल्लाह, ये अल्लाह के दुश्मन चुप हो जा। उस पर भी अगर बात का सिलसिला जारी रहता है तो आगे तीसरे नंबर पर फरिश्ता कहता है उसकुत लानतुल्लाह अलैह, खामोश हो जा अल्लाह की लानत तुझ पर हो। तो ये मस्जिद के अंदर इस तरह बातें करना वाकईतन जो है बड़ा ख़तरनाक है। आजकल वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई इतफाक़िन अस्वाद फिल मसाजिद, वह हम हर मस्जिद में देख रहे हैं। बस वजू करके आओ, बाहर बिल्कुल खड़े मत रहो, सीधे आ जाओ, नमाज में लग जाओ, तिलावत में लग जाओ, तस्बीह में लग जाओ। तो बहरहाल मस्जिद के आदाब का भी लिहाज होना चाहिए। इस मस्जिद का अदब यही है, देखो इसकी तामीर, एक तो जाहिर की तामीर आपने कर दी यानी ये इमारत बना दी, और हकीकी आबादकारी मस्जिद की क्या है, मस्जिद वाले आमाल से उसको आबाद किया जाए, मस्जिद के आदाब का लिहाज किया जाए, मस्जिद के अंदर जिन चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए उसका अहतमाम किया जाए, ये हकीकी आबादी। इसी को तो कुरान में बारी तआला ने फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करते हैं वो लोग जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ना ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, इन्हीं का काम है। जाहिर है मस्जिद को कौन आबाद करेंगे, गैर मुस्लिम आबाद करेंगे या मुसलमान? मस्जिद वाले अमाल करने की सलाहियत तो मुसलमानों ही के अंदर है, वही इसको आबाद करेंगे। तो आप अल्लाह ताला ने आपको जब ये सलाहियत अता फरमाई है, यहाँ मस्जिद में आने के बाद जो है इसका अहतमाम भी होना चाहिए, अल्लाह ताला की दाद के साथ ताल्लुक पैदा करो। ये लोग हमारे हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब नवर अल्लाहबन के मोहतमी एक जुमला फरमाया करते थे, लोग कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो भाई मस्जिद में आएंगे तो अल्लाह से ताल्लुक़ होगा, तो इससे बड़ा और क्या सिलसिला हो सकता है। लोग तो इसकी कम हैसियती को जाहिर करने के लिए ये जुमला बोलते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हजरत फरमाते थे कि भाई अल्लाह के साथ जिसका ताल्लुक़ कायम हो गया उसके सारे मसाइल क्या हो गए, हल हो गए। ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور اسی کے لیے مسجد ہے. آج جب کہ اس نئی مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے, میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام باتیں جو اس سلسلے میں عرض کی گئی ان کا بھی اہتمام رکھنے کی تاکید کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے, اور اللہ کے جن جن بندوں نے اس مسجد کی تعمیر میں جس جس حیثیت سے حصہ لیا ہے اس کو اللہ اپنی شان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے. شروع میں ایک حدیث میں نے روایت کی تھی, سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں, من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ, جو آدمی مسجد تعمیر کرتا ہے خالص اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے, بن اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا مکان جنت کے اندر بنائے. یہ بنا یہ تو تشبیہ دی گئی ہے بنانے میں, ورنہ بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق مسجد بنائی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان عظمت کے مطابق جو ہے اس کا جو ہے بدلہ دیں گے. جنت کی تو ہر ہر نعمت کا یہ حال ہے, مالا رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, یہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا, ان بنانے والوں کو اللہ جو عطا فرمائیں گے. ایسا نہیں کہ پوری مسجد بناوے, مسجد کی تعمیر میں ذرا سا حصہ لیا وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اس لیے کہ بعض روایتوں میں ہے ولو کم سے قطع تھی, چاہے قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو, یہ پرندہ ہے تو زمین کے اوپر گھونسلہ بناتا ہے چھوٹا سا, وہ تو اس کا گھونسلہ تو اتنا ہوتا ہے کہ اس میں ہم سجدہ بھی نہیں کر سکتے, تو بھی معلوم ہوا مسجد کی تعمیر میں کسی نے حصہ لیا, چند روپیے دیے چند پیسے دیے, وہ بھی جو ہے بشارت کا حقدار ہے. لیکن بس ایک قید ہے, کیا؟ یبتغی بہ وجہ اللہ, اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی حاصل. اپنی نیتوں کا بھی جائزہ لے لو بھائی, خدا نہ کرے کوئی دوسری بات دل میں ہے تو اس کو دور کر کے توبہ کر کے نیتوں کو درست کر لیجئے, تاکہ اس پر جو بشارت سنائی گئی ہے جو عظیم اجر اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اس سے خدا نہ کرے محرومی کی نوبت نہ آئے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.